हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 14 एंड 15। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहकण रघुनाथान् वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिसनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अध्याय 10 जिसका शीर्षक है विभूति योग भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक संख्या 14 एंड 15। आज भगवान कृष्ण की महानता और उनके शब्दों की महानता को व्यक्त करते हुए अर्जुन अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अर्जुन कह रहे हैं, सर्वमेतत् प्रीतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्त विदुर्देवा न दानवाः। सर्वमेतत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिम् विदुर्देवान दानवाः। सर्वमेतत् तं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः शब्दात् सर्वम् एतत् वृत्तं मन्ये सर्वम मतलब सब कुछ एतत् यानी जो अभी आपने मुझे बताया उस सबको वृत्तम वो सब सत्य है और उसको मन्ये मैं उस सत्य को स्वीकार कर रहा हूँ यत माम वदसि केशवा वो सत्य कौन सा है यत मना जो माम यानी मुझको वदसि कहते हो केशव हे कृष्ण आपने जो कुछ मुझे बताया है वही संपूर्ण सत्य है और मैं उसे मन्ये मतलब मैं पूरा का पूरा से स्वीकार करता हूँ नहीं ते भगवान व्यक्तिम नहीं मतलब ना मतलब कभी नहीं ही यानी निश्चय ही ते आपके भगवान हे भगवान व्यक्तिम यानी स्वरूप को विदुर देवान दानवा विदुर मतलब जानता है जान सकते हैं देवा यानी देवता गण ना ही दानवा असुर गण अनुवाद अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ हे प्रभु ना तो देवता गण ना ही असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे हम सब ध्यान से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को श्रवण करेंगे श्रील प्रभुपाद की जय हो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा असुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते जब देवता गण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथा कथित विद्वानों का क्या कहना भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण हैं। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए उसे श्रीमद् भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में कहा गया है श्रीमद् भगवत गीता को समझने की गुरु परंपरा का ह्रास हो चुका था अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा था श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए परंपरा विधि के तुल्य लुप्त होने के कारण उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें जिसने भगवान श्री कृष्ण की सारी बातें जान ली थी तभी हम श्रीमद् भगवद गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे आगे अर्जुन कहते हैं श्लोक संख्या 15 मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए आगे अर्जुन कहते हैं स्वयमेवात्मनात्मानम् वित्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते स्वयमेवात्मनात्मानम् वित्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते स्वयमेवात्मनात्मानम् विद्ध त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। शब्दार्थ स्वयमेवात्मना, स्वयं यानी स्वयं, एव निश्चय ही आत्मना अपने आप, आत्मानम अपने आप को वेत्थ जानते हो। अर्जुन ने पहले कहा नहीं थे भगवान व्यक्तुम विदुर देवाना दानवा, आपको ना ही देवतागण जान सकते हैं और ना ही असुरगण। तो मानो अर्जुन बोले फिर मुझे कौन जान सकता है, तब अर्जुन कहते कृष्ण बोले मुझे कौन जान सकता है, तब अर्जुन कहते हैं स्वयमेवात्मनात्मानम वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, और कोई नहीं जान सकता, केवल आप ही अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा अपने आप को जान सकते हो। वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, आप क्योंकि समस्त पुरुषों में उत्तम हो इसलिए वो आपकी महानता को नहीं समझ सकते। और आपके अंदर क्या महानता है, आगे कहते हैं अर्जुन भूत भावना भूतेश देव देव जगतपते। भूत भावना हे सबके उद्गम, भावना मतलब जितने भी जीव हैं उनके उद्गम। भूत ईश, भूत कहते हैं जीवों को, सभी जीवों की ईश, ईश यानी स्वामी। देव देव यानी देवताओं के भी स्वामी, और जगतपति पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। अनुवाद, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने आप को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे, आप सब ध्यान से हम सब इस तात्पर्य का श्रवण करेंगे, एक एक शब्द को श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही क्लियर करके बताएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं परमेश्वर श्री कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते, ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे श्रीमद् भगवद गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण की वाणी है, और चूंकि कृष्ण का तत्व ज्ञान है अतः उसे कृष्ण से ही समझना चाहिए जैसा कि अर्जुन ने किया, इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 1.2.11 में कहा गया है वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। अर्थात परम सत्य का अनुभव तीन प्रकार से किया जाता है, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है भगवान को न समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को देखकर स्वीकार करते हैं, किंतु उनके मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में क्षमा किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ सकते। जैसे अर्जुन ने क्या कहा है वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भले ही कोई निर्विशेषवादी हो जो भगवान के रूप में या उनकी प्रमाणिकता को स्वीकार कर ले, लेकिन कृष्ण को ही पुरुषोत्तम के रूप में नहीं समझ सकते, जिसके बाद अर्जुन ने उनको समझा है। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम करके संबोधित करते हैं। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। जैसा कि अर्जुन ने कहा, भूत भावन भूते, भूत भावन मतलब सारे जीवों के जनक। तो कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हर एक वस्तु के कारण भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए अर्जुन ने उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित किया। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है, समझो किसी ने स्वीकार कर लिया, तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। जैसे अर्जुन ने कहा भूत एश, तो यहाँ पर शबरूपा जी कहते हैं हो सकता है कि कोई उनको भूत भावन समझ ले कि हाँ ठीक है, सारे संसार में हर एक वस्तु के उत्पन्न करने वाले या स्रोत जो है वो भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन वो नियंता के रूप में बस भगवान ने उनको बना के छोड़ दिया, कंट्रोल नहीं है, तो वो कंट्रोलर नहीं मान पाते, उसको नियंता के रूप में नहीं जान पाते, इसलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया। आगे शबरूपा जी कहते हैं यदि कोई भूतेश के रूप में भी उन्हें समझ लेता तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम के रूप में समझ नहीं पाता, देव देवेश के रूप में नहीं समझ पाता, इसलिए उन्हें देव सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। और यदि कोई देव देव के रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ नहीं आते, इसलिए उन्हें यहाँ पर जगतपति कहा गया। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करें। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। श्रीमद् भगवत गीता मात की जय हो। अध्याय 10 भगवान का ऐश्वर्य। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य के विषय में बहुत बहुत समझाया, मगर पहले उससे पहले कहा कि मेरा जो स्वरूप है, मेरी जो वास्तविकता है, मेरी जो विभूति है, उसके विषय में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शुरू में परमम वचा, यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और अगर आपको मैं बता रहा हूँ तो उसका कारण ये है कि यत्तेहं प्रियमाणाय, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका हित हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षि अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशा। वास्तव में मैं इतना महान हूँ कि मेरी वास्तविकता को, मेरी महानता को कोई जानता ही नहीं है, ना देवता और ना ही असुरगण जानते हैं। लेकिन योमाम अजमनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ समर्थेषु सर्व पापै प्रमोच्यते। लेकिन जो मुझे अजन्म अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोहरहित समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों को बताना शुरू किया। पहले भगवान ने वो क्वालिटीज बताई, 20 क्वालिटीज जो हमने बहुत डिटेल से पढ़ी, उसके विषय में बताया। और उसके बाद भगवान ने श्लोक नंबर 6 में बताया कि सब कुछ का स्टार्ट में हूँ। महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मत भावामानसा जाता एमाम लोक एमा प्रजा, कि जो कुछ भी है सात ऋषिगण, उससे पहले पहले ब्रह्मा जी, उषार कुमार, सात ऋषिगण, जो कुछ भी है वो सब मुझसे उत्पन्न हुआ है, और जो मेरी इन विभूतियों को अच्छे तरीके से जान लेता है, सो विकल्प न योगे न युज्यते नाथ संशय, वो निसंदेह मेरी प्रेमा भक्ति में लगेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। और उसके बाद भगवान ने चतुर्श्लोक ही भगवद गीता के विषय में बताया, जिसमें सबसे पहले भगवान ने कहा अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, मैं ही समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत हुई है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। और जो मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं उनके लक्षण बताते हुए भगवान ने कहा मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित होते हैं, वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए तुष्यन्ति च रमन्ति च, बहुत बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। और इस तरह से जो सदैव मेरी भक्ति करते रहते हैं, सदैव मेरा भजन करते रहते हैं, प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयन्ति, जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त हो सकते हैं ऐसी बुद्धि मैं उन्हें प्रदान करता हूँ, और अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा दूर कर देता हूँ। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। और उसके बाद जब इतना भगवान ने बता दिया, उसके बाद अर्जुन ने फौरन से अपना निर्णय दिया। श्लोक नंबर 12 और 13 में अर्जुन ने बता दिया कि भगवान आप ही परम ब्रह्म हो, आप परम धाम हो, आप परम पवित्र हो, आप परमम हो, आप ही पुरुषोत्तम हो, शाश्वतम हो, दिव्यम हो, आदि देवम अजम विभुम, आपके अंदर ही सारी ये सारी योग्यताएं हैं, और ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, आहुस्तम ऋषयः सर्वे, सारे ऋषियों ने बोला, देवर्षि नारदस्तथा, देवर्षि नारद ने बोला, असितो देवलो व्यासः, व्यास देव ने बोला, देवल मुनि ने बोला, असित मुनि ने बोला, और अब आपने भी ऐसा बोला है स्वयं सैव ब्रविष में। तो अब आज के श्लोक में अर्जुन कहते हैं जो कुछ भी आपने मुझे कहा है, अब तक जो कुछ बताया श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक भगवान ने जो कुछ भी कहा है उसके विषय में अर्जुन कहते हैं सर्वम, सर्वम मतलब सब का सब, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसके अंदर मेरी श्रद्धा नहीं है। वास्तव में भक्तों ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि भगवान के हर एक शब्द पर हृदय से श्रद्धा होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो भगवान के कुछ शब्दों को तो बहुत ही हृदय से स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ बातों को दिल से स्वीकार नहीं कर सकते। जब भगवान कहते हैं, जब सांख्य योग बताते हैं ना दूसरे अध्याय में, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, नैश्चैनम क्लेदयन्त्या, पुनः शोषयति मारुतः, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकता, और जल उसे गला नहीं सकता। जब ऐसी बातें आत्मा के विषय में बताते तब जो मायावादी होते हैं, जो निराकारवादी होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर भगवान की इन बातों को स्वीकार करते हैं, जहां पर आत्मा की जो सुप्रीमेसी उसका आत्मा का जो विषय में जब बताया जाता है तब वो बहुत ज्यादा हृदय से उस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब कृष्ण कहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो, तब वो कहते हैं कि बहुत सारे आप पढ़ोगे ना अगर दूसरी दूसरी श्रीमद् भगवद गीता की टीकाएं, तो उसमें पता वे क्या कहते हैं, वे कहते हैं जो भगवान ये कहते हैं ना, जब भगवान ये कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, तो ये जो सामने अर्जुन के कृष्ण खड़ा है ना, रथ पे बैठा हुआ है, उसका चाबुक पकड़ के, वो कृष्ण की शरण में नहीं जाना है। वास्तव में जो उस कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म है ना, उसकी शरण में जाना है। ये वही ब्रह्म कह रहा है कृष्ण के थ्रू। तो ये कृष्ण जो है वो भगवान नहीं है, वास्तव में निराकार भगवान है। तो इस तरह की बहुत सारी टीकाएं हैं श्रीमद् भगवद गीता की, जो कृष्ण के शरीर को कृष्ण की आत्मा से भिन्न करती हैं। परंतु कृष्ण वही कृष्ण जो अर्जुन के रथ पर बैठे हुए हैं, इसको तो शास्त्रों में कहा गया अर्ध कुकुट न्याय, यानी कि कोई अगर मुर्गी से अंडा प्राप्त करना चाहता है तो वो क्या सोचे कि क्योंकि ऊपर वाला जो मुख है मुर्गी का वो दाना खाता है तो हमारे पेट से जाया होते हैं, नीचे का जो पोर्शन है उससे अंडा प्राप्त होता है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला हिस्सा काट के फेंक देते हैं, ऊपर वाले हिस्से को हम है ना अलग कर देंगे और सिर्फ नीचे वाले हिस्से से अंडा प्राप्त करेंगे। तो क्या ऐसा संभव है? अगर आपको मुर्गी से अंडा प्राप्त करना है तो वो पूरी की पूरी मुर्गी जो है वो आपको उस पूरी की बात है ना, पूरी केयर करनी पड़ेगी। उसी तरह से यदि आपको वास्तविक अर्थ जानना है शास्त्र का, तो उसको पूरे का पूरा सर्वमेतद्धितं मन्ये यन्मां वदसि केशव। अर्जुन ने कहा, कृष्ण तुमने जो कुछ भी बताया है मैं उसे पूरा का पूरा सत्य मानता हूँ, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें कोई संशय है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बोलते प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड गॉड, भगवान को समझने का कोई ना इसमें कोई मुश्किल बात तो है ही नहीं, क्योंकि साक्षात परम सत्य भगवान जो है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण, साक्षात श्रीमद् भगवद गीता में हर एक तत्व को कितने सुंदर तरीके से बताते हैं और अपने विषय में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् दस्ति धनंजय। 7.7 में भगवान ने कहा, हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। 10.2 में भगवान ने कहा, अहम आदिर ही देवानाम, मैं ही समस्त देवताओं का आदि हूँ, अहम सर्वस्य प्रभो। 10.8 में भगवान ने कहा, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, जितने भी भौतिक और आध्यात्मिक लोक हैं, उनके जितने भी प्राणी हैं, उनके उनका मैं प्रभु हूँ, उनका स्वामी मैं हूँ। तो क्योंकि हम इस भौतिक प्रकृति में रह रहे हैं तो हम हमारी बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कई दफा अनन्य शब्द का उच्चारण किया। भगवान ने सबसे पहले कहा 8.14 में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततम, चित्त के अंदर विचलन नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, क्या वाकई में कृष्ण भगवान है या कोई और भी हो सकता है। अनन्य चेता, चित्त पूरा मुझ में टिका होना चाहिए, माम एव, केवल एक अकेले कृष्ण की बात हो रही है। भगवान कहते अन्य अभिलाषिता शून्य। 9.22 में भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम, और किसी का नहीं केवल मेरा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूँ और जो उनके पास है उसको सुरक्षित करता हूँ। मतलब भगवान ने बहुत जगहों पे बताया अनन्य, और कोई नहीं, कल्याण उसी का होगा जो केवल और केवल मेरी शरण में आएगा। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते, वो कहते हैं आप किसी की भी शरण में चले जाओगे तो आपको वही फल प्राप्त होगा। यदि ऐसा होता तो भगवान को भगवद गीता बताने की जरूरत क्या थी। कुछ लोग बोलते हैं कि इतना ज्यादा हमें ना धर्म को कठोरता से बयान नहीं करना चाहिए, उसमें लचक होनी चाहिए, आप सबको सहनशील होना चाहिए। कोई किसी की भी पूजा करता है तो अच्छा कर रहा है तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा एप्रिशिएट किया, भगवान ने साफ साफ कहा ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त अविधि पूर्वकम्। भगवान ने कहा जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी बलि कितनी ही श्रद्धा से पूजा करते हैं, वास्तव में वो भी मेरी पूजा करते हैं किंतु ये त्रुटिपूर्ण ढंग से है, अविधि पूर्वकम है, वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है। और 7.20 में तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि जो मेरी शरण में नहीं जाते हैं बल्कि दूसरे देवताओं की शरण में जाते हैं। भगवान ने साफ साफ कह दिया कामस्तस्य हृदज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, उनकी बुद्धि को तो काम ने किडनैप कर दिया है, हृदज्ञान उनके ज्ञान का हरण हो गया है, तभी वो मेरी शरण में नहीं आ रहे हैं बल्कि देवताओं की शरण में जाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं सर्वमेतद् ऋतम मन्ये, आपने जो कुछ कहा मैं उसे पूरा का पूरा सत्य मानता हूँ। यन्माम वदसि केशवा, केशव तुमने एक एक शब्द जो भी तुमने बोला है उस पर मुझे पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है कि तुमने वास्तव में भक्तों ये भक्ति की कसौटी है कि आपके अंदर श्रद्धा कितनी है अपने इष्ट के शब्दों में, अपने इष्ट के शब्दों पर आप कितना विश्वास। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम कृष्ण के भक्त हैं मगर हम कृष्ण की भी भक्ति करते हैं और इसको भी मानते हैं उसको भी मानते हैं उसको भी मानते हैं, सबकी पूजा करनी चाहिए सबकी भक्ति करनी चाहिए। लेकिन जब भगवान ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज, सब धर्मों को छोड़ो मेरी शरण में आ जाओ, तो फिर किसी और की भक्ति करने का सवाल कहाँ से उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम अन्य देवताओं का या अन्य स्वरूपों का अनादर करें, परंतु भक्ति और प्रेम, कृष्ण ने कहा मन मना भवमत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कहीं नहीं कहा कि यहाँ तक भगवान ने कह दिया कि माम एव केवल मेरा, सिर्फ और सिर्फ निश्चित रूप से सिर्फ मेरी भक्ति करोगे, माम एव ये प्रपद्यन्ते, तभी तुम माया से मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो वास्तव में जो भक्ति के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है जिसका यहाँ पर अर्जुन प्रदर्शन कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि श्रद्धाविहीन तथा असुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। कृष्ण को समझने के लिए जो क्वालिटी चाहिए जो भगवान ने चौथे अध्याय में बताई, अर्जुन को कहा कृष्ण ने कि मैं तुम्हें इसलिए बताता हूँ क्योंकि भक्तों से मैं सखा चेते, तुम मेरे भक्त हो साथ साथ में मेरे मित्र भी हो, इसलिए क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो अनसूयवे, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और यदि हमें भगवान के शब्दों को समझना है तो हमें अर्जुन के लेवल पर आना आएगा। अर्जुन कृष्ण के भक्त भी थे और कृष्ण के मित्र भी थे, तो हमें कृष्ण के भक्त बनने के साथ साथ कृष्ण के साथ अपना संबंध भी जोड़ना है और भगवान के शब्दों पर अटूट विश्वास होना चाहिए। इसी क्योंकि श्री प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं श्रद्धाविहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोगों कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि यहाँ भगवान अर्जुन ने कहा नहीं ते भगवान व्यक्तिम वेदुर देवान दानवा, जो देवता गण हैं जो के सत्व गुण में होते हैं वे ही जब भगवान को नहीं समझ सकते तो फिर दानव कैसे समझेंगे, और जो दानव नहीं समझ सकते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वान फिलोसोफर या साइंटिस्ट का क्या कहना, वो कैसे भला भगवान को समझ सकेंगे जिन्हें भगवान के शब्दों में विश्वास नहीं है। तो यदि भगवान को समझना है तो उसका एक ही तरीका है, जो कुछ भगवान ने कहा है उनको एज इट इज स्वीकार करना। जब श्री प्रभुपाद जी के पास एक महिला आई थी अंग्रेज अमेरिका की थी, उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं भगवत गीता को पढ़ना चाहती हूँ तो आप मुझे बताओ, भगवत गीता की बहुत सारी कमेंट्रीज हैं, आप मुझे बताओ उसमें से मैं कौन सी भगवत गीता पढ़ूं। तब श्रील प्रभुपाद जी ने जब देखा तो कोई भी ऐसी भगवत गीता नहीं थी जिसमें भगवान के जो शब्द हैं उनको इजिटस बताया गया हो। कहीं पर मायावाद का मायावाद का दर्शन था, कहीं पर निराकारवाद का। भगवत गीता में पॉलिटिक्स डाल दी गई थी। वास्तव में जो भगवान ने भगवत गीता में बताया है, भक्त्या माम अभिजानन्ति, केवल भक्ति के द्वारा मुझे समझा जा सकता है, केवल भक्ति ही मुझे समझ सकता है, उसका कहीं दर्शन नहीं होता था। तभी श्री प्रभुपाद जी ने कहा एक ऐसी श्रीमद् भगवत गीता का निर्माण करना चाहिए जो एज इट इज हो। जैसा भगवान ने कहा ऐसा ही शब्दों को हमें लोगों को बताना पड़ेगा, तभी भगवान कोई भगवान को समझ सकेगा और भगवान की पूर्ण भक्ति स्वीकार कर सकेगा। जैसा कि अर्जुन ने भगवान को समझा, अर्जुन ने भगवान को एज इट इज जैसा भगवान ने कहा है वैसा समझने का प्रयास किया, और अर्जुन ने भगवान को कहा आपने जैसा ही मुझे बताया है मैं उसको एज इट इज समझता हूँ, सर्व में तद्रितम मन्ये, मैं उसको एज इट इज स्वीकार करता हूँ। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि प्रथम वक्ता ने जिस तरह से श्रोता को सुनाया है और उस श्रोता ने जो निर्णय निकाला है वही हम भी निकालें, तभी यह समझा जाएगा कि हम श्रीमद् भगवद गीता को अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर आपका निर्णय अर्जुन के निर्णय से भिन्न है, इसका मतलब आप भगवद गीता को सही तरह से समझ नहीं सके। और भगवान के शब्दों को कैसे समझा जा सकता है, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता को पॉइंट 37 में कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। देखो अर्जुन, मुझे समझने के लिए तुम्हें किसी शुद्ध गुरु के पास जाना पड़ेगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन, सबसे पहले उसको नमस्कार करो, और परिप्रश्ने न सेवया, उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न करो, क्योंकि वो वास्तविक ज्ञान को समझ चुके हैं, तब वो तुमको समझा सकते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, और इसी से हमें कृष्ण कृपा प्राप्त हो सकती है। इसीलिए शास्त्र कहता है यस्य प्रसादात भगवत प्रसादात यस्य प्रसादा न गति कुतोपि। अगर गुरु की कृपा हो जाएगी तभी भगवान की कृपा प्राप्त करना संभव है, यदि गुरु की कृपा नहीं हुई तो फिर भगवान को समझ पाना संभव है। न गति कुतोपि, कोई आपकी गति प्राप्त नहीं होगी अगर आप भगवान को, गुरु अगर आपको नहीं प्राप्त होते और आप अपनी बुद्धि से यदि कृष्ण को समझने का प्रयास करते हो तो संभव नहीं है। इसे श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से हमें कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया था। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली, तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकेंगे। तो जिस तरह से अर्जुन भगवान के हर एक शब्द को स्वीकार कर रहे हैं, हमें भी अर्जुन को ही अर्जुन के ही इस मत को स्वीकार करना पड़ेगा। और किस तरह से, गुरु परंपरा से, कोई शुद्ध गुरु से हमें इस शिक्षा को लेना पड़ेगा। और जब हम शुद्ध गुरु के सानिध्य में रहकर भगवान के शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे तभी हम वास्तविक अर्थ को समझ सकेंगे। अगर हम श्री प्रभुपाद जी के इन शब्दों को नहीं समझते हैं, यदि तात्पर्य को पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं, यदि किसी शुद्ध भक्त से श्रवण नहीं करते हैं, और खुद से अगर हम भगवद गीता के श्लोक्स को और उनके अनुवाद को पढ़ेंगे तो फिर कभी भी भगवद गीता के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, कभी भक्त नहीं बन पाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा किसी शुद्ध भक्त के अंडर में रहकर इन शास्त्रों को समझना चाहिए। और आगे अर्जुन ने कहा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। स्वयं एव, केवल एक अकेले आप ही आत्मानम अपने आप आत्मना आत्मानम अपने आप को अपनी अंतरंग शक्ति से वेथत्वम पुरुषोत्तम केवल आप ही अपने आप को अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा जान सकते हो, ना तो देवतागण जान सकते हैं और ना ही असुरगण जान सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 19 में यमराज जो है वो अपने दूतों को बहुत ही सुंदर शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् नाम विदुरशयो नापि देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतो नु विद्या धरचारणालय। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् वास्तविक धर्म क्या है, असली धर्म क्या है, जो भगवत प्रणीतम जो कि भगवान ने निर्मित किया है। वास्तविक असली धर्म सिद्धांतों का निर्माण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा किया जाता है। और ना वह विदुर ऋषयो नापि देवा पूर्णतः सत्वगुण महान ऋषियों तक भी जो सर्वोच्च लोकों के स्थान में पाए गए ऋषि बड़े बड़े देवता जो कि शुद्ध जो कि सत्वगुण में होते हैं वे भी भगवान को नहीं समझ सकते। न सिद्ध मुखिया असुरा मनुष्या और ना ही सिद्ध जीव होते हैं जो उनके मुख्य शुद्ध लोकों में जो सबसे सर्वोच्च लोग हैं वो भी भगवान को नहीं समझ सकते। असुरा मनुष्या जो बड़े बड़े असुर हैं वो भी नहीं समझ सकते। तो फिर भूलोक के हमारे जैसे कीड़े मकोड़े जैसे मनुष्य भला उनको क्या सकेंगे। और वही आगे कहते हैं कुतो नु विद्या धर चारण दया कुतो अन्य तो फिर निस्संदेह जो विद्याधर हैं जो कनिष्ठ बिल्कुल कनिष्ठ लोग हैं और चारण मतलब उन लोकों के निवासी जहाँ के लोग स्वभाव से संगीतकार होते हैं उनको चारण बोलते हैं। तो विद्याधर और चारण उन्हें कैसे समझ सकते हैं जब के साक्षात जो बड़े बड़े सिद्ध लोग के मुख्य देवता होते हैं वो भी भगवान को नहीं समझ सकते। तो फिर वास्तव में असली धर्म कौन सा है जो भगवान ने ही निर्मित किया है। तो फिर बहुत सारे शास्त्र हैं भगवान के द्वारा चार वेदों का निर्माण हुआ और उसके बाद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद तो इतनी भिन्न भिन्न शास्त्र हैं। तो भला हम किस तरह से असली धर्म के विषय में समझ सकते हैं, कैसे हम ये पता लगाएं कि हम जिससे सुन रहे हैं वो सही बता रहा है, क्या वही सही है जो हम सुन रहे हैं उसका क्या प्रमाण है। तो फिर यमराज जी अपने दूतों को बहुत ही सुंदर बात बताते हैं। वे कहते हैं स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयासखी वयम् द्वादशयते विजानीमो धर्मं भगवत भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यम ज्ञात्वा मृतमश्नुते। कि ये जो द्वादश महाजन है कौन है, स्वयंभू नारद शंभू, स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, नारद अर्थात महर्षि नारद देवर्षि नारद, शंभु यानी शिव जी, कुमार कपिलो मुनि कुमार यानी चार कुमार, कपिल अर्थात जो कपिल देव हैं देवुति के पुत्र वो, और प्रहलादो जनको भीष्मो पहले मनु और प्रहलाद और महाराज जनक और भीष्म पितामह, बलिर वायासखी बलि यानी महाराजा बलि और वायासखी मतलब सुखदेव गोस्वामी और आगे कहते हैं यम यानी मैं धर्मराज। ये 12 महाजन जो हैं वो धर्म के सिद्धांत को बलि भांति जानते हैं। हे सेवको यह अलौकिक धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या परम भगवान की शरणागति तथा भगवत प्रेम कहलाता है प्रकृति के तीनों गुणों से अकुलुषित है या अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्यों के लिए दुर्बोध है। इसको साधारण लोग नहीं समझ सकते, बहुत गोपनीय है, किंतु संयोग वश यदि कोई भगवान भाग्यवान इसे समझना चाहता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और इस तरह से भगवत धाम लौट सकता है। तो इसको समझने के लिए हम इन 12 महाजनों का सहारा ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है ब्रह्मा जी स्वयंभू। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, के वास्तव में यदि कोई ईश्वर है तो वो कौन है, परम ईश्वर यदि कोई है तो वो कृष्ण है, कृष्ण ही परम ईश्वर है, उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। और गोविंदम आदि पुरुषम, वही आदि पुरुष है, तो सर्व कारण कारण वही है, तो इसीलिए मैं उन भगवान की शरण में हूँ। तो ब्रह्मा जी स्वयं अपने आचरण से बताते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम नमः, कि मैं उस गोविंद की शरण में हूँ। तो इसका अर्थ है कि पहले महाजन ब्रह्मा जी हमें यह सिद्ध करके बताते हैं यदि कोई पूजनीय है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। उसके उपरांत नारद मुनि, जो हर क्षण भगवान के पवित्र नाम का गुणगान करते रहते हैं, वो अपनी शिक्षाओं में हमें यही बताते हैं कि यदि कोई पूजनीय है तो भगवान श्री कृष्ण है। और शिव जी अपनी पत्नी, दूसरों से हम थोड़ा बहुत झूट कह सकते हैं परंतु पत्नी से, वो अपनी पत्नी से कहते हैं उमा कहूं अनुभव में अपना सत्य हरि भजन जगत सब सत्थपना। वो किसी का भी भजन बोल सकते थे मगर वो कहते हैं हरि का भजन। यदि हम कृष्ण का भजन करते हैं तो वही वास्तव में हमारे जीवन का एकमात्र कल्याण करें। चार कुमार श्रीमद् भागवतम के प्रथम वक्ता हैं और जिस भागवतम में केवल कृष्ण के विषय में ही कहा गया है। और उसके बाद कपिल मुनि अपनी माता को भगवत विज्ञान के विषय में बताते हैं और मनु महाराज कृष्ण भक्ति की स्थापना करते हैं। प्रहलाद महाराज को अपने पिताजी ने कहा कि तुम्हें भगवान का नाम नहीं लेना है, तुम्हें कहना है हिरण्यकश्यप की जय। प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए और हर एक टुकड़े से तुम्हें यही आवाज आएगी जय श्री हरि। वैसे तो भक्तों शास्त्र कहता है कि अपने माता पिता की अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रहलाद महाराज हमें सिखाते हैं कि यदि माता पिता भी भगवान की भक्ति करने से मना करें तो फिर हमें उनकी ये बात नहीं माननी चाहिए। बाकी सारी बातें हम अपने माता पिता की मान सकते, माननी चाहिए, परंतु प्रहलाद महाराज सिखाते हैं कि आप मनुष्य बने हो, आप कृष्ण भक्ति से दूर नहीं रह सकते, चाहे कोई भी आपके जीवन का महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति हो वो आपको मना करे, लेकिन फिर भी आप भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ सकते। महाराज जनक जो स्वयं राज ऋषि थे वो भगवत भक्ति के विषय में बताते हैं। भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं और वहां पर युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं कि ये जो सामने आपके खड़े हैं ना एशते, ये जो कृष्ण है ना वही भगवान है, उंगली से दिखा दिखा कर कहते हैं। महाराज बलि अपने गुरु महाराज की अवज्ञा करते हैं, उनके गुरु शुक्राचार्य उन्हें मना करते हैं कि तुम इस वामन देव जो आए हैं छोटे से बनकर उनको कुछ भी देने के लिए प्रतिज्ञा मत करना, लेकिन महाराजा बलि कहते हैं गुरुदेव आप क्या सिखा रहे हो, सब कुछ इनका ही तो है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि ये भगवान आज भिक्षुक बनकर मेरे पास आए हैं, मेरे पास जो संपत्ति तो है वो तो मैं उनको दूंगा ही, मैं अपना आप भी उनकी शरण में रख दूंगा। तो वैसे तो गुरु अवज्ञा करना बहुत बड़ा पाप है, जैसे हम अगर 10 नाम अपराध में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है गुरु महाराज की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, लेकिन यदि वही गुरु कृष्ण भक्ति या कृष्ण शरणागति से मना करे तो महाराज बलिया में सिखा रहे हैं कि आप तब गुरु अवज्ञा भी कर सकते हो। शुभदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं एते चंद सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, केवल भगवान यदि कोई है तो वो कृष्ण है। बलिर वयासिखिर वयम, वयम यानी धर्मराज, और धर्मराज जो कि स्वयं यमराज है वो अपने दूतों को यह शिक्षा देते हैं। ये यमराज जी श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 23 में अपने पुत्र के जैसे सेवकों को बहुत ही सुंदर शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं नामोचारण माहात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का अजामिलोपी ही नैव मृत्युपाशाद मुच्यते। नामोच्चारण महात्म्यम, केवल नाम उच्चारण करने का ये महात्म है, ये महिमा है उनके नाम उच्चारण की। किनके नाम की? हरे, जो भगवान हरि हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो परम ईश्वर हैं, उनके केवल नाम उच्चारण करने की। पश्यत पुत्र का, जरा देखो मेरे पुत्रों मेरे सेवकों, क्या उनके नाम उच्चारण करने की महात्म्य का है। अजामिलोपि येन एव, ऐसे अजामिल जो कि कितना ज्यादा पापी था, परम पापी अजामिल ने यह ना जानते हुए कि वह भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण का नाम उच्चारण किया था। अजामिल को तो पता भी नहीं था कि भगवान का नाम है, याद भी नहीं आया कि इस समय मैं नारायण को पुकार रहा हूँ। लेकिन भगवान के नाम की ये महिमा है कि एक बार किसी ने बोल दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसके समस्त अपराध उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। तो केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण खा था, फिर भी भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण करने से उसने नारायण का स्मरण किया और इस तरह से वह तुरंत ही मृत्यु पाशाद मुच्यते, मृत्यु के पास से बच गया। जरा देखो मेरे पुत्रों उस भगवान की क्या महिमा है। तो ये सारे महाजन हमें उसी भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि जो महाजने ये न गता सुपंथा, जो महाजनों ने हमें बताया है वही एकमात्र रास्ता है जिस पर चलकर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, हम जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। और आगे अर्जुन कहते हैं स्वयं एव आत्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पति। हे सबके उद्गम, हे परम पुरुष, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान पुरुषोत्तम है। उसके साथ साथ अर्जुन यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान हर एक जीव के उद्गम है, भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, सारे देवताओं से महान देवता हैं, ब्रह्मांड के प्रभु हैं। और इतना स्वीकार करने के बाद कहते हैं स्वयमेव वात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। निसंदेह एकमात्र आप ही अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति से जान सकते हैं। भगवान के तीन विभिन्न रूपों के विषय में श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान ब्रह्म भी हैं, भगवान परमात्मा भी हैं और भगवान भी हैं। और जो उनका सर्वोच्च ज्ञान क्या है कि भगवान जो परम सत्य है वो भगवान है। और जो कोई जान लेता है कि परम सत्य जो है वो साक्षात भगवान का स्वरूप है, तो अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था क्या है कि उनको भगवान समझना, उनको एक व्यक्ति समझना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रीति से यहाँ पर समझाया है कि कुछ लोग कुछ मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ सकते, क्योंकि उनकी मुक्ति जो है वो सायुज्य होती है, वो निराकार में लीन हो जाते हैं, तो फिर कृष्ण के विषय में नहीं समझ सकते। इसलिए अर्जुन ने कहा मैं आपको पुरुषोत्तम मान रहा हूँ, मुझे निराकार के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जो मेरे सामने खड़े हो वही पुरुषोत्तम है, मैं स्वीकार करता हूँ। कुछ भले ही कृष्ण को समस्त जीवों के जनक नहीं मानते हैं, परंतु अर्जुन क्या कहते हैं, भूत भावना, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि आप ही समस्त जीवों के आदि कारण हो। तो कोई लोग भले ही भगवान को भूत भावना मानते हैं, सारे जीवों का उद्भूत करने वाला स्रोत मानते हैं, तो भी वो उनको परम नियंता नहीं मानते हैं। इसलिए अर्जुन ने भूतेश कहकर भगवान को बताया कि मैं आपको परम नियंता मानता हूँ। और कुछ लोग भले ही भगवान को परम कंट्रोलर मान लेते हैं, तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम नहीं मानते। वो सोचते हैं कि भगवान परम नियंता है, परंतु देवता जो हैं वो स्वतंत्र हैं। तो लेकिन अर्जुन यहाँ पर कहते हैं देव देव, वो देवताओं के भी उद्गम है, मैं इस बात को भी मानता हूँ, सभी देवताओं का पूजन्य देव भगवान श्री कृष्ण है। यदि कोई लोग उन्हें देव देव के रूप में समझ भी लेते हैं, तो भी प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में उन्हें नहीं मानते हैं। इसीलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया कि चाहे अर्जुन कहते हैं भगवान को सर्वमेतद्रितम मन्ये, आपने कह दिया अहम सर्वस्य प्रभो, तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि आप हर एक वस्तु, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, हर एक प्राणी के वास्तविक स्रोत हो, उनके कंट्रोलर हो, उनके उत्पन्न करने वाले हो। इसलिए यहाँ पर भगवान को जगतपति, इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति का आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। तो हमें भी चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। जिस तरह भगवान अर्जुन को भगवान के विषय में यह स्वीकार किया, अर्जुन ने इस बात, इस तथ्य को माना कि कृष्ण ही सब कुछ है, समस्त कारणों के कारण है, समस्त देवताओं के देवता है, समस्त वस्तुओं, समस्त लोकों के कंट्रोलर हैं, तो हमें भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए, तभी हम शास्त्र के वास्तविक लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि पैसा साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छी तरीके से कर सकूँ।